आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम हिमांशी भरद्वाज है और मैं आपके साथ आपकी विज्ञान किताब को डिस्कस करती हूँ। आज हम जिस अध्याय पर बात करेंगे वह है अध्याय 11, जिसका नाम है समय एवं चाल, टाइम एंड स्पीड। समय को हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं और चाल को हम स्पीड कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अध्ययन बिंदुए क्या हैं, किस किस पर हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप जाएंगे पेज नंबर 101 पर, 101 पर, और अध्ययन बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समय की अवधारणा, समय की अवधारणा, उसके बाद सरल लोलक एवं उसका आवर्तकाल, उसके बाद पढ़ेंगे समय का मात्रक, फिर देखेंगे चाल की अवधारणा और सबसे लास्ट में देखेंगे दूरी एवं समय का ग्राफ। अभी आपके लिए ये सारे शब्द नए हैं, धीरे धीरे जब हम इन्हें पढ़ेंगे आपको ये सारे शब्द समझ में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखेंगे सभी लोग पेज नंबर 101 पर। यदि हम पढ़ें, दौड़ें, सोएं या कुछ भी करें, समय निरंतर चलता ही रहता है, अतः हमारे लिए समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के जंतर मंतर में स्थित वृहद सम्राट यंत्र एक ऐसी धूप घड़ी है जिससे 2 सेकंड तक के अल्प समय को शुद्धता से मापा जा सकता है। इसे सन 1735 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन काल में भी इसी प्रकार से रेत घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग समय मापन के लिए किया जाता था। तो ये हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, अब हम इसे समझ लेते हैं। इसमें ये कहा है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, लेकिन समय निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं और समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय सबसे कीमती वस्तु है। जिसने समय का मोल जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो आपके पास अगर घड़ी नहीं है तो आप समय को कैसे जानेंगे? क्या कभी आपने ये सोचा है? या फिर जो हमारे बुजुर्ग थे या हमसे पहले की पीढ़ियां थी, जब घड़ी नहीं होती थी तो वो समय को कैसे नापते थे? क्या आपने कभी इस बारे में भी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए और उसको जानिए। पहले के समय में जब घड़ियां विकसित नहीं हुई थी, आजकल तो सबके घर में घड़ी होती है, मोबाइल फोन्स होते हैं, आज हम आसानी से समय देख सकते हैं, लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तो जो राजा महाराजा थे उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र बनाए जिससे समय को नापा जा सकता था, या फिर वह केवल छाया को देखकर, जो हमारी छाया धूप में बनती है उसको देखकर ही समझ जाते थे कि क्या समय हुआ है। ठीक है, अब बात करें कुछ ऐसे यंत्रों की, तो एक राजस्थान में स्थित है जंतर मंतर, एक ऐसी स्मारक है जिसके अंदर वृहद सम्राट यंत्र है। ये ऐसी धूप घड़ी है जिससे कि 2 सेकंड तक के अल्प समय को भी शुद्धता से नापा जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में हमने यही जाना कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जंतर मंतर स्थित है जिसके अंदर वृहद सम्राट यंत्र, एक ऐसी धूप घड़ी पाई जाती है जो 2 सेकंड के अल्प समय को भी माप सकता है। इसको कौन से सन में बनाया गया? 1735वीं ईस्वी में जयपुर में बनाया, और किसने बनवाया? महाराजा सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और प्राचीन काल में इसके अलावा भी रेत घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग भी मापन के लिए, समय के मापन के लिए किया जाता था। तो ये समरी हुई आपके फर्स्ट पैराग्राफ की। अब हम अपना पहला टॉपिक 11.1 पढ़ेंगे, समय की अवधारणा। ठीक है, आप देखिए चित्र भी दिया है जंतर मंतर का, और कई लोग गए भी होंगे जंतर मंतर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समय की अवधारणा। इसके लिए चित्र भी दिया है, 11.2 पर एक रेत घड़ी भी दी है और रेत घड़ी का वर्णन भी पहले वाले पैराग्राफ में आया है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में कई ऐसी आवर्ती घटनाएं होती हैं जो निश्चित अंतरालों में दोहराई जाती हैं तथा जिनसे हमें समय तथा समय अंतरालों का आभास होता है। क्या देखा हमारे पूर्वजों ने कि पूरे दिन में, दिन सुबह से लेकर रात्रि तक कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो निश्चित अंतराल में, गैप में फिर से दोहराई जाती हैं या दोबारा होती हैं, और इनका समय और समय अंतरालों का हमको इन घटनाओं से आभास होता है। जैसे जानेंगे कौन कौन सी आवर्ती घटनाएं होती हैं। पहली, सौर दिन। सूर्य प्रतिदिन प्रातः काल में उदय होता है, सब जानते हैं। ठीक है, सनराइज इन द मॉर्निंग। एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच के समय को एक सौर दिन कहा जाता है। तो वह समय जो आज के सूर्य उदय से कल के सूर्य उदय तक रहेगा उसको हम सौर दिन कहेंगे। ठीक है, दूसरा, चंद्रमास। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की अवधि को चंद्रमास कहते हैं। प्रत्येक महीने में अमावस्या की रात आती है तो उस अमावस्या से लेके अगले अमावस्या तक को हम क्या जानेंगे, चंद्रमास जानेंगे। फिर बात करें वर्ष की, जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, एक पूरा उसके सामने क्या करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, उस समय को एक वर्ष के समय के लिए नियत किया गया है। ठीक है, मतलब पृथ्वी किसके अराउंड घूमती है, किसके अराउंड घूमती है, सूर्य के, सन के, और वो जितना समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में उसको हम कहते हैं एक वर्ष या वन ईयर। एक माध्य और दिन को मानक समय मान लिया जाए तथा इसे 24 बराबर घंटों में विभाजित कर लिया जाए तब एक घंटे में 24 घंटे होते हैं। आपको हम समय के बारे में बता रहे हैं कि पुराने जमाने से लेके आधुनिक समय तक समय को किस हिसाब से जाना जाता था या विभाजित किया जाता था, हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक माध्य और दिन को मानक समय मान लें तो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे यानी 24 आवर्स मिलाकर एक दिन, वन डे बनाते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, 12-12 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे। अब इसी प्रकार एक घंटे को 60 बराबर मिनटों में तथा एक मिनट को 60 बराबर सेकंड में विभाजित किया जाए तब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और एक मिनट में भी 60 सेकंड होती हैं, तो फिर एक घंटा 60 मिनट का हुआ और एक मिनट 60 सेकंड की हुई। इस प्रकार आप पाएंगे कि एक घंटे में 3600 सेकंड तथा एक दिन में 86,400 सेकंड या 86,400 सेकंड होती है। ठीक है, आप ज्ञात कीजिए आपने ये कैसे निकाला। देखिए, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और सेकंड्स कितनी होती हैं एक मिनट में, 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3600 सेकंड्स मिलेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल है, आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आप याद कीजिए कि एक वर्ष में कितने और कितने सेकंड्स होते हैं। एक वर्ष में आपको निकालना है, एक दिन में निकाल लिया, आप एक वर्ष में निकाल लिए। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिएगा, आएगा, नहीं तो हम आपको एक्सरसाइज पार्ट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि हम एक दिन या एक माह या एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। हमारे पूर्वजों ने समय को मापने के लिए आवर्त गति को आधार बनाया था, आवर्त गति को आधार बनाया था। ठीक है, आवर्त यानी सूर्य कब उदय हो रहा है और कब उसका अस्त हो रहा है उसके अनुसार उन्होंने समय को नापा कर दिया था। ठीक है, समय हम मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है जो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियां आवर्त गति के आधार पर ही कार्य करती है। आवर्त गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है, या सरल लोलक को हम कैसे जानेंगे, पेंडुलम के द्वारा जानेंगे। पेंडुलम वाली घड़ियां भी आपने घरों में देखी होंगी। तो सबसे सामान्य ये एक चिर परिचित यानी कि बहुत ज्यादा फेमस उदाहरण है पेंडुलम या सरल लोलक। ठीक है, इसके आधार पर घड़ियां बनाई गई थी पहले, आज भी प्रचलित है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। 11.2 हमें पढ़ना था, हमने बताया था आपको सरल लोलक और उसका आवर्त काल। ठीक है, धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा लटकाकर दोलन करवाते हैं। देखिए, आप घर पे भी करके देखिएगा, एक स्टैंड लीजिए, धागा लीजिए और उस पे एक बॉल बांध दीजिए और उसको देखिए किसी चीज पे लटका के, तो वो उसको वो दो डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा और बार बार एक ही पॉइंट पे आके रुकेगा जहां पे उसे स्ट्रैंड से परपेंडिकुलरली बांधा गया है। अगर आप उसे हिलाएंगे तो एक बार इधर जाएगा राइट साइड, एक बार जाएगा लेफ्ट साइड और फिर वापस अपनी उसी पोजिशन पे आ जाएगा। तो इसे आप घर पे करके देखिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि दोलन करवाते हैं तो इसे सरल लोलक कहते हैं। जैसे चित्र 11.3 में दिया गया है, धातु का गोला सरल लोलक का गोलक कहलाता है। ठीक है, किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का आप गोला बनाकर ले सकते हैं। ठीक है, चित्र 11.3 ए में लोलक विराम अवस्था में है। ठीक है, कहाँ पे है देखिए, ए में देखिए आप जो पेंडुलम है वो कहाँ पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। ठीक है, एक ही जगह पे है, विराम अवस्था में है। इसे लोलक की अपनी माध्य स्थिति पर होना कहा जाता है, ये अपनी माध्य स्थिति पर है। ठीक है, जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। आप इसे करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है, चित्र 11.3 बी में दिखाए अनुसार जब गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। देखिए, ओ पर है, ओ से गया ए पर, ठीक है, और ए से बी और फिर बी से वापस ओ पर आया, तो यह एक पूरा दोलन कहा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तथा बी से वापस ए पर आता है, तब भी इसे लोलक का एक दोलन पूरा करना कहते हैं। देखिए, चित्र को देख के समझिए कि अगर जो ये आपका धातु से बनाया हुआ गोला है, ये ए पर गया और ए से गया बी पर और बी से फिर ए पर गया, पहले देखिए ए से गया बी और बी से गया ए, ये पूरा एक दोलन होगा। ऐसा नहीं कि ए से बी गया तो दोलन हो गया, नहीं, ए से बी और फिर वापस बी से ए जाएगा तब जाकर एक दोलन पूरा होगा, या फिर ए से ओ, ओ से बी और फिर बी से ओ और ओ से ए, ऐसा करेगा तब इस सरल लोलक का एक दोलन पूरा होगा। ठीक, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। ठीक, समझे आप कि जितना समय एक दोलन कंप्लीट करने में लगाएगा उसको पेंडुलम का आवर्त काल या सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं, जो ब्लू बॉक्स में दिया है। ठीक है, अब आएंगे हम गतिविधि पर, एक्टिविटी पर। देखें, आवर्त काल ज्ञान ज्ञात करना। लगभग 1 मीटर से अधिक लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 11.3 में दर्शाए अनुसार स्टैंड या कील पर लटकाकर एक सरल लोलक इस प्रकार बनाइए कि इसकी लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो जाए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है
तो उसको बंद कर दीजिए क्योंकि पंखे से वह हिल सकता है या उसको आने और जाने में अधिक समय या कम समय भी लग सकता है। तो दोलक का माप हम पूरा आवर्तकाल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उसको बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। एक चिन्ह लगा दीजिए फर्श पर या दीवार पर लगा दीजिए कि ये पोजीशन ओ है, जैसा चित्र 11.3 में दिखाया गया है। ठीक। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए एक विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं, विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच, ठीक है, तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग भी किया जा सकता है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे मध्य में से एक ओर ले जाइए, या तो ए की तरफ या बी की तरफ आप उसको ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इसकी डोरी तनी हुई हो, टाइट हो, लूज ना हो, ठीक है। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना है। क्या करना है, जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है तब घड़ी का समय नोट कीजिए, ठीक, और मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगे समय का आप मापन कीजिए। जो 20 दोलन वो कंप्लीट करता है उस समय को आपको नोट करना है। आपके पास अगर स्टॉप वॉच है तो उससे कीजिए, नहीं तो आप अपनी रिस्ट वॉच से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किस में आएंगे, अब देखेंगे कि सारणी 11.1 में अपने प्रेक्षण लिखिए। आपने जो ऑब्जर्वेशंस आपकी आई, आपने जो भी चीजें नोटिस की उनको आपको इस सारणी में भरना है, ठीक है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं और इस क्रिया कलाप को 3-4 बार दोहराइए और सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। जैसे आपने 20 दोलन करवाए, ठीक है, और दोलनों के लिए लिया गया समय था 40 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में एक दोलन कंप्लीट होता है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए। उस समय को 2 सेकेंड लग, उसको होने में 2 सेकेंड लगते हैं, तो 20 को करने में कितने लगे, 40 सेकेंड लगे। अब आप आवर्तकाल निकालेंगे, तो आवर्तकाल के लिए आप 40 को भाग देंगे 20 से, 40 को भाग देंगे 20 से, तो आपका सेकेंड 2 सेकेंड का समय निकल आएगा। इसी प्रकार आपको अपनी रीडिंग्स लिखनी है, आपको ये 4 बार करना है, हो सकता है रीडिंग्स में थोड़ा डिफरेंस आए, इसको आपको सारणी में खुद से भरना है, ठीक है। अब आएंगे हम समय का मात्रक, 11.3 समय का मात्रक। समय की यूनिट क्या है, तो समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक सेकंड है। हम किसी भी चीज को सेकंड से डिनोट करते हैं, किसको, समय को। जैसे हम स्पीड भी लेते हैं तो किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये समय का एक छोटा मात्रक है, छोटी यूनिट है। एक सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, हमारे द्वारा 2-3 शब्दों जैसे जय राजस्थान का जोर से उच्चारण करने में लगा समय लगभग 1 सेकेंड है। जैसे मैंने अभी बोला जय राजस्थान, तो कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड का समय लगेगा। या जय श्री कृष्णा, हमने ये बोला तो कितना समय लगा, 1 सेकेंड का समय लगा, देख लीजिए आप बोलकर। विराम की स्थिति में किसी सामान्य स्वस्थ युवा की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। जो हमारा पल्स रेट है वो 72 पल्स पर मिनट है, ठीक है, और बच्चों में यह दर कुछ अधिक होता है, ठीक। अब बात करेंगे समय के अन्य बड़े मानक कौन से हैं, तो इसके लिए आप पेज नंबर 104 पर देखिए, सारणी दी गई है जिसमें आपको बताया है मिनट, घंटा, दिन और वर्ष, और इन सब का छोटे मात्रकों से क्या संबंध है वह हमको बताना है, तो एक मिनट का सेकंड से क्या संबंध है? 60 सेकंड का संबंध है, यानी कि 1 मिनट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 60 सेकंड, ठीक है? और घंटा, घंटा में कितना? 60 मिनट, और फिर सेकंड कितना होगा वो आपको लिखना है, दिन और वर्ष का। आप इसे खुद मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है? आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम विभिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे अपनी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा अगर हम दिन और घंटे में बताएंगे तो करोड़ों खरबों में मेरी और आपकी आयु, मेरी आयु चली जाएगी, आपकी शायद करोड़ों में या लाखों में जाए, ठीक है? तो इसकी सुविधाजनक करने के लिए इस चीज को हमने इसी प्रकार क्या किया, वर्षों में बताया। अपनी आयु को हम वर्ष में बताते हैं कि मैं 9 साल का हूं, मैं 10 साल का हूं या मैं 20 साल का हूं, ठीक है? आजकल अधिकांश लोग क्या करते हैं, घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने के लिए भी क्या करेंगे, घड़ियां पहनते हैं। और समय को वर्षों में व्यक्त करना कब कहां पे सही नहीं है? जब हम घर से कॉलेज जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, उस समय को हम वर्षों में नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत छोटी यूनिट, बहुत पॉइंट्स में चला जाएगा, डेसिमल यूनिट हो जाएगी। उसको हम किस में ले जाते हैं? उसको हम ले जाते हैं मिनट या सेकंड्स में, तब सेकंड यूज होती है। और जब बहुत ज्यादा लंबे समय को बताना होता है तब हम उसे वर्ष में बताते हैं, ठीक है? आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, दो सेल्स लगे होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, मतलब बहुत ज्यादा करेक्ट वैल्यू आती है इसमें, ठीक है? इसके अतिरिक्त आजकल इलेक्ट्रॉनिक या आंकिक डिजिटल घड़ियां भी विकसित हो गई हैं, जिनमें समय का मान अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप देखेंगे डिजिटल घड़ी का एक फोटो भी आपको दिया है, और आप लोगों के पास भी घड़ियां होंगी, तो उनमें क्या होता है, डिजिट्स लिख के आती हैं या नंबर्स लिख के आते हैं कि भाई हमारा इस समय समय 8:22 हो रहा है, सेकंड्स भी लिख के आ जाती हैं, ठीक है? आजकल ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। इनमें से कुछ घड़ियों में 1 सेकंड के 10,00,000वें भाग यानी माइक्रोसेकंड तथा 1 सेकंड के अरबवें भाग यानी नैनो सेकंड जैसे अति अल्प समय को भी मापा जा सकता है। ये घड़ियां सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते हैं अपने रिसर्चेस में, ठीक है? अब देखेंगे भारत की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा समय अनुरक्षण सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ की घड़ियां 1 सेकंड के 10,00,000वें भाग का यथार्थता के साथ मापन कर सकती है, ठीक? अब बात करेंगे चाल की अवधारणा।
तो ये बताया कि हमारे भारत में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है जहां पे कुछ ऐसी घड़ियां हैं जो नैनो सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स को भी नाप सकती हैं, ठीक है? और अभी हमने जो घड़ियों के बारे में पढ़ा वो घड़ियां कैसी थी, जो मिनट्स और सेकंड्स के बारे में ही बता सकती है। इतनी प्रिसाइज वॉचेस कौन यूज करता है? सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, चाल की अवधारणा 11.4। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है ना? आप अपने आसपास हम कई वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, इनमें से कुछ वस्तुएं तीव्र तो कुछ वस्तुएं मंद गति से चलती हैं। माना कि एक बैलगाड़ी तथा एक मोटरसाइकिल दोनों ही एक साथ एक ही सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करना प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कि किसकी गति मंद होगी और किसकी तीव्र। इस पर बात करने से पहले पैराग्राफ समझ लेते हैं कि हमने कई बार देखा होगा कि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन आता है, जैसे लगता है कि वस्तु भी गति कर रही है। और हमने कई सारी चीजों को गति करते हुए देखा है, जैसे कि साइकिल चलते हुए देखा होगा आपने या मोटर बाइक चलते देखा होगा। अब इनकी तीव्रता और इनकी मंदता पे बात करेंगे कि कौन मंद है और कौन तीव्र, के इसको जानने के लिए हमने क्या पार्टिकुलर्स बनाए हैं हम वो जानेंगे, ठीक है? तो बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल जब एक ही पाथ पर शुरू करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं और एक पाथ को ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी ये आप बता सकते हैं? इसी प्रकार से सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली कुछ अन्य वस्तुएं लेकर उनके जोड़े बनाइए तथा आगे दी गई सारणी 11.3 में इनकी गति को मंद गति तथा तीव्र गति के रूप में दो वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको सारणी में खुद से लिखना है, कुछ जोड़े बनाने हैं कि किसकी गति कम है और किसकी गति ज्यादा है। पहला देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है कार और साइकिल, तो यहाँ पे मंद गति आपके अनुसार किसकी होगी? साइकिल की होगी, और तीव्र गति होगी कार की, क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी हुई है। साइकिल को हम पैडल से चलाते हैं, वो धीरे चलती है, और कार तेज चलती है, तीव्र गति से चलती है, हाई स्पीड से चलती है। ठीक है, ऐसी कुछ अन्य जोड़े आपको बनाने हैं, जैसे बैलगाड़ी और बाइक, ठीक है, और ट्रक या बस, या फिर बस या साइकिल, इस तरीके के जोड़े आपको बनाने हैं और उनकी मंद गति और तीव्र गति को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद है, मंद गति कर रही है, और कौन सी तीव्र गति कर रही है, ये कैसे आपने सोचा? हाँ ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर आपने सोचा, पर कोई इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण तो जरूर होगा। ठीक है, जानते हैं, यदि निश्चित समय में एक वस्तु दूसरी वस्तु ब से दूरी तय कर रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु अ की गति वस्तु ब की गति से तीव्र है। क्या कहा इसने कि किसी एक निश्चित टाइम पीरियड में, समय में, कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है अ, वह दूसरी वस्तु ब से उसी समय में ब से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करती है या दूरी को तय करती है, तो उसकी स्पीड ब से अधिक तीव्र होगी, गति उससे ज्यादा होगी। मान लीजिए मैं और आप दोनों सुबह 8 बजे चलना शुरू करें, ठीक है, 10 मिनट में मैं स्कूल तक पहुंच जाऊं और आप स्कूल के आधे रास्ते तक ही पहुंचे, तो गति किसकी तीव्र होगी 10 मिनट के अंदर? मेरी तीव्र होगी और आपकी गति मंद होगी। समझ गए? तो इसी को हम निश्चित करते हैं, इसी तरीके से हम निश्चित करते हैं गति को। जब वस्तु की गति तीव्र होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल अधिक है, तथा जब वस्तु की गति धीमी होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल कम है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है यह है कि हम इनके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तीव्रतम गति अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इनके द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की गई उसको जानें। मान कि दो कारें गति कर रही हैं, पहली कार 1 घंटे पश्चात 50 किलोमीटर चली गई और दूसरी कार 65 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, तो स्पष्ट है कि दूसरी कार तेजी से चाल या गति से चल रही है। इसी प्रकार यदि हम दो वस्तुओं द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से किसकी चाल अधिक और किसकी कम है। अभी हमने आपको और भी एग्जाम्पल दिया था, अपना और आपका वाला, कि स्कूल कौन पहले पहुंचता है 10 मिनट के अंदर, उससे हम बता सकते हैं कि किसकी गति तीव्र है और किसकी गति मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यही चाल की परिभाषा है। जब भी कोई कार या बस चलना प्रारंभ करती है तो शुरू में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अपनी 1 घंटे की गति के दौरान उसकी चाल स्थिर नहीं रहती, बल्कि कभी अधिक और कभी कम होती रहती है। ठीक है, देखा होगा आपने कि जब भी कोई बस या कार स्टार्ट होती है तो उसकी एक कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती, कभी गति कम होती है, कभी गति तेज होती है। ठीक है, और क्योंकि उसमें सामने से कोई अवरोध आ जाता है, कोई सामने आ गया या कोई और वाहन तेजी से निकल रहा है, तो उसको अपनी या उसको मोड़ना है तो उसको अपनी गति को कम करना पड़ता है। अतः कोई भी वाहन 1 घंटे तक समान गति में नहीं चलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा चाल के बारे में। अगले ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।